कुञ्जविहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजन रंजन यशोदनंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा प्रभु पादा श्रील प्रभु पादा गुरु भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय ऑल ग्लोरीज असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 8th चैप्टर वर्स नंबर 20 कल नहीं हुआ था क्लास अच्छा 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 चंद्रमौली महाराज शिक्षाश्रम ओके श्रीशुक उवाच इति आत्मानं समाधिस्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्द प्रमोदितो मेने आत्मानं पूर्णं आशिषां श्रीशुक उवाच इति आत्मानं समाधिस्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्द प्रमोदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषां श्रीशुक उवाच इति आत्मानं समाधिस्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्द प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। श्रीशुक उवाच इति आत्मानं समाधिस्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्द प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। श्रीशुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी सेड इति दस आत्मानम् अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ द सुप्रीम सोल समाधिस्य आफ्टर फुल्ली इंस्ट्रक्टिंग गर्गे व्हेन गर्ग मुनि च ऑल्सो स्वगृहम् टू हिज ओन अबोर्ड गते हैड डिपार्टेड नंद महाराज नंद प्रमोदित बिकेम एक्सट्रीमली प्लीज्ड मैंने कंसिडर्ड आत्मानम हिज ओन सेल्फ पूर्णम आशिषाम फुल ऑफ ऑल गुड फॉर्च्यून। ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। शिल सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूड आफ्टर गर्ग मुनि हैविंग इंस्ट्रक्टेड नंद महाराज अबाउट कृष्णा डिपार्टेड फॉर हिज ओन होम। नंद महाराज वॉज वेरी प्लीज्ड and considered himself full of all good fortune. Purport: Krishna is a super soul. Krishna is a super soul and Nanda Maharaj is an individual soul. By the instructions of Garga Muni, both of them were blessed. Nanda Maharaj was thinking of Krishna's safety from the hands of demons like Putana and Shakatasura. And because he possessed such a son, he thought of himself as most fortunate. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishnam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Swapadantikam वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपदाय प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। मधुर्योज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंत हारिने। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रताम्बोदे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरार्विर्भाव भूमेस्त्व निर्देष्टा सज्जना प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो
रामो रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो हरे कृष्ण। आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि गर्ग मुनि के जाने के बाद गर्ग मुनि ने नंद महाराज को कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी दी, फिर अपने घर में चले गए। नंद महाराज प्रसन्न थे, अपने आप को सौभाग्यशील माना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा है और नंद महाराज आत्मा है, और गर्ग मुनि की शिक्षा से दोनों को लाभ मिला। नंद महाराज सोच रहे थे कि कैसे कृष्ण की रक्षा की जाए असुरों से, पूतना शकटासुर इत्यादि, और क्योंकि उनका ऐसा कोई पुत्र था इसीलिए वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे। तो यहाँ पर ये एक विडंबना है, एक आश्चर्य है कि नंद महाराज को चिंता है कृष्ण की सुरक्षा के लिए। कंस को जब पता चला कि उसको मारने वाला देवकी का आठवां गर्भ जो है वो गोकुल में जन्म ले चुका है, तो कंस ने बहुत सारे असुरों को भेजना शुरू किया एक एक करके। पहले पूतना देवी आए एक राक्षसी के रूप में। एक्चुअली गर्ग संहिता में बताया गया कि ये सब जो राक्षस थे ये बड़े बड़े योगी थे, और इसमें से कई योगी मतलब असुर थे लेकिन योगिक शक्ति थी इनके पास, और इन्होंने बहुत शक्ति प्राप्त कर ली थी। और कंस सब जगह पे भ्रमण कर रहा था, कंस बहुत शक्तिशाली था, इसलिए कंस क्या कर रहा था कि वो अपने इलाके को, अपने जो एरिया है उसको बढ़ाना चाहता था, अपने जो अनुयायी है उनके फॉलोअर्स को। तो कंस क्या कर रहा था, पूरे शक्ति के साथ पूरे विश्व में भ्रमण करता था, और भ्रमण करने के बाद ये बड़े बड़े दूसरे राक्षस थे उनसे लड़ाई करता, और लड़ाई करते करते उनको भी, कंस बहुत शक्तिशाली था, अधिकतर समय वो पराजित कर देता, उस व्यक्ति को बिल्कुल गिरा देता जमीन पर, और हाथ में तलवार लेकर मारने के सर्वे बोलता है कि या तो तुम स्वीकार करो कि तुम मेरे सेवक रहोगे जीवन भर, या भी मैं तुम्हारा वध करता हूँ। और सब असुर तो शरीर से बहुत आसक्त होते हैं तो स्वीकार कर लेते, यस कंस महाराज की जय आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक रहूँगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का दासानुदास है कंस दासानुदास। इस तरह से कंस ने पूतना को, बकासुर को, शक्टासुर, अघासुर, केशी, ये सब लोगों को अपने वश में कर रखा था। ये सब भी अपने अपने बड़े बड़े जो है प्रतिद्वंदी थे, ये सब बहुत पावरफुल थे अपने आप में। जब जब ऐसे शक्तिशाली लोग धरती पे बढ़ जाते हैं तब भगवान का अवतार होता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि दुष्टों को मारने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो कृष्ण इन सब असुरों को मार रहे हैं बड़े आसानी से। आप जानते हैं पूतना को कैसे मारा? पूतना एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में आई थी। पूतना जानती थी कि अगर मैं अपने असली रूप में आऊँगी सब लोग पहचान लेंगे, नहीं स्पेशली भक्तों के संग में गोकुल में, गोकुल में नंद, यशोदा, रोहिणी, नंद के भाई सुनंद, अभिनंद, परजन्य, उनके पिता परजन्य और ये सब फैमिली में सब बहुत अच्छे, बहुत सब दिखने में बहुत सुंदर भक्त और गुण से भी सुंदर, सब मात्रा में सुंदर। और ये स्त्रियाँ बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, आभूषण से सजे हुए, उनके बीच में अगर पूतना आ जाए असली रूप में तो कैसे लगेगा? तुरंत पता चल जाएगा। नहीं की गौर निताई की जाए, राधा कुंज बिहारी की। पूतना एक बड़ी भयंकर राक्षसी थी। उसका कद जो है करीब 8 मील लंबा था, 8 मील राइट, 8 माइल्स, 8 मील लंबा, उसके बड़े भयंकर रूप। तो अगर ऐसे व्यक्ति अगर समझो कोई सत्संग कार्यक्रम में आ जाते तुरंत पहचाना जाएगा ये कोई स्पेशल है, तो लोग डर जाएंगे। इसलिए पूतना योगिनी थी, खेचरी, प्रभुपाद बोलते हैं खेचरी नाम की राक्षसी। ऐसे खेचरी राक्षसी होते हैं कई बार, वो एक एक हाव एक लकड़ी के ऊपर जो पेड़ होता है, पेड़ के जो डाली होती है उसके ऊपर बैठकर उड़ सकते हैं हवा में। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं, राक्षसी हैं खेचरी नाम के, जो अपनी शक्ति से उड़ सकते हैं। तो बड़े बड़े यौगिक सिद्धि प्राप्त करना ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये असुरों को भी मिलती है। अच्छा परिवार का सुख प्राप्त करना वो असुरों को भी मिलता है। रावण कितना शक्तिशाली था, रावण के पास सबसे बड़ी विद्या थी, जो वेदों की सारी विद्या उसके पास थी, लेकिन रियल शक्ति है भक्ति की शक्ति। यौगिक शक्ति बड़ी चीज़ नहीं है। अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, शीता, वशीता, ये सब सिद्धियाँ प्राप्त करना ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये व्यक्ति को मिल जाती है आसानी से, लेकिन भक्ति नहीं मिलती। तो पूतना ने अपने यौगिक शक्तियों का उपयोग किया और एक सुंदर नारी के रूप में आई। और क्योंकि वो इतने सुंदर थे, उसके हाथ में कमल का फूल था, कमल के फूल को घुमा रही थी, तो बाकी सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छे स्वागत, सबने स्वागत किया उनका। फिर वो कृष्ण के पास में गए और यशोदा और रोहिणी सोच रहे थे शायद लक्ष्मी देवी आए हैं कृष्ण से, कृष्ण का दर्शन करने के, तो उन्होंने कुछ शंका नहीं की। और तब बालक कृष्ण वहाँ लेटे हुए थे और पूतना ने अपने काल को देखा। जैसे पूतना ने कृष्ण को देखा वो समझ गई ये बहुत विशेष बालक है। उसने गोकुल में अनेक बच्चों की हत्या की थी, लेकिन कृष्ण को देखते ही वो समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है। वो डर गई, एक्चुअली भागवत में बताया गया वो डर गई, पूतना को डर लगा। और उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण सोच रहे थे कि मेरा अवतार हुआ है असुरों को मारने के लिए, लेकिन वैदिक धर्म के अनुसार एक स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैदिक परंपरा में ब्राह्मण, बूढ़े व्यक्ति, स्त्री और बच्चे, इनकी हमेशा रक्षा की जाती, और गाय, ब्राह्मण, बूढ़े व्यक्ति और स्त्री, ये चारों की हमेशा रक्षा की जाती। तो वो सोच रहे थे कि मैं कैसे इसके विरुद्ध लड़ सकता हूँ, कैसे इसको मार सकता हूँ। स्वयं अर्जुन भी, आप जानते हैं महाभारत की लड़ाई में जब भीष्म को पराजित करने का समय आता है, 9 दिन हो जाते हैं महाभारत की लड़ाई के और कोई तरीका नहीं होता भीष्म को पराजित करने का। भीष्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि पांडवों को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं हजारों की संख्या में, और सब पांडव हताश हो जाते हैं और वो कृष्ण के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। एक भक्त का मतलब है कि वो संकट की स्थिति में कृष्ण का आश्रय लेता है। जब भी कोई खतरा आता है वो पुकारता है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और कोई आश्रय है ही नहीं, भगवान को पुकारते हैं। द्रौपदी भी, महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले द्रौपदी का जब वस्त्रारण हो रहा था उस समय द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण हे गोविंद। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा हे कृष्ण हे गोविंद, तो जो उसका ऋण हो गया मुझे उसकी पुकार से, उसको मैं कभी चुका नहीं सकता। आई एम इंडेटेड टू हर बिकॉज शी कॉल्ड आउट। और आप लोग रोज 25,000 बार बुला रहे हैं तो कितना भगवान आपके प्रति ऋणी होंगे। नहीं, 25,000 बार 25,000 नेम्स हम रोज जप कर रहे हैं, कुछ जागते हुए कुछ सोते हुए। कृष्ण इज सो इंडेटेड टू यू। लेकिन श्री प्रभुपाद ये भी बोलते हैं आगे, देयर शुड बी अ क्वालिटी टू सच अटरेंसेस। ये पुकारने की भी एक गुण होना चाहिए। सभी मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक भक्त, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट ले रहे थे प्रसाद, और एक भक्त बोल रहे थे प्रभु जी अभी मेरा 7 माला बचा है पूरा करना है बहुत। ऐसे किसी का लोन पे करना बाकी है ना। जल्दी पूरा हो जाए, जल्दी भगवान, जल्दी आप नाम के रूप में आके जल्दी वापस चले जाओ जिससे मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य कर। अगर आपको कोई प्रिय है, अगर आपको मालूम पड़े कि कृष्ण आ रहे हैं आपके कमरे में या आप जहाँ बैठे हैं, तब कृष्ण को ये नहीं सोचोगे कभी जा रहे हैं। कोई बड़े सन्यासी आते हैं, एटलीस्ट हम चाहते हैं ज़्यादा समय रहें। स्वयं कृष्ण समझे प्रभुपाद आ रहे हैं कुंज बिहारी मंदिर में, कल शाम को आ नहीं रहे लेकिन आ रहे हैं समझे। और आप क्या सोचोगे, जैसे श्रील प्रभुपाद आएंगे तब क्या सोचोगे, तो क्या बोलोगे, प्रभुपाद आप आ गए कितनी देर रहोगे, मुझे थोड़ा और सेवा है। आप सोचोगे प्रभुपाद यहीं पर रहें। मेरे को याद है जब 1977 में मैं प्रभुपाद जी से मिला था, तो प्रभुपाद जी के मैंने लेक्चर सुना था, पर्सनली नहीं लेकिन खाली दूर से लेक्चर सुना था। तो डिवोटीज इतने उत्सुक होते थे प्रभुपाद के पीछे जाने के लिए। और जब तक आप टॉप पे किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो पास में नहीं जा सकते। और जूह मंदिर में प्रभुपाद रह रहे थे 5वें माले के ऊपर जहाँ उनके कमरे हैं, और मैं एक बार गया भी था मिलने के लिए, तो 3रे माले पर किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो। जाओ, छोटे छोटे भक्तों को अलाउड नहीं है। मेरे को अभी तक याद है क्योंकि मैं नहीं मिल सका इसे, लेकिन दर्शन किए थे और लेक्चर सुने थे उनके। तो जब कोई बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है तो हम उसका संग और चाहते हैं, और कृष्ण अपने नाम के रूप में आ रहे हैं और हम उत्सुक नहीं हैं। आज मैं अपने स्वयं का दोषी ठहरा रहा, मुझे भी स्वयं जब मैं नींद आ रही थी, एकलव्य प्रभु मेरे सामने थे इसलिए उनके डर से मैं थोड़ा जाग रहा था। वो इंटेंसली जप कर रहे थे और मेरे को अपने जप से जगा रहे थे। व्यक्ति को बहुत कॉशियस होना चाहिए जप में। मैं कल श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था हरे कृष्णा महामंत्र पे, एक फेमस लेक्चर है जो हर एक कैसेट पे है, उसके अलावा और एक लेक्चर जो सैन फ्रांसिस्को में दिया, प्रभुपाद उसमें नाम को एनालाइज कर रहे थे, हरि नाम का मतलब क्या है। और उसमें बोलते बोलते श्री प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से जप करता है तो उसकी इफेक्टिविटी ज़्यादा होती है। मैं प्रभुपाद जी के मुख से पहली बार सुना, हालांकि सब सन्यासी बोलते ही हैं स्पष्ट रूप से, प्रभुपाद जी स्पेशली बोल रहे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देर शुड बी अ क्वालिटी टू सच अटरेंसेस, व्हेन यू अटर द नेम ऑफ द लॉर्ड इट शुड हैव सर्टन काइंड ऑफ क्वालिटी, एक क्वालिटी होनी चाहिए। और वो क्वालिटी क्या है जो द्रौपदी में थी, वह हेल्पलेसनेस, फील वन सेल्फ हेल्पलेस, सिवाय कृष्ण के मेरा कोई आश्रय नहीं। कुछ दिन पहले दिसंबर में मैं बेलगाम गया था, और बेलगाम के भक्तों ने एक राधा गोकुलानंद डीटीज के सामने एक बहुत सुंदर एक डायरोमा जैसे बनाया था गजेंद्र मोक्ष का, लेकिन दिसंबर में था प्रभु जी, बेलगाम के कुछ डिवोटीज आए हुए हैं, तो वो जो डायरोमा था उसको देख कर प्रवचन के दौरान राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि ये जो है ये जो डायरोमा है ये हमको जप के समय इस पर मेडिटेट करना चाहिए। गजेंद्र हाथी आप सब जानते हैं, वो पानी में था और बहुत खुशी से खेल रहा था अपनी फैमिली के साथ, और अचानक मगरमच्छ ने इसको पकड़ लिया। अपनी पूरी शक्ति से वो लड़ रहा था, 1,000 साल तक वो लड़ता रहा, और अंत में उसने जान लिया कि मैं नहीं जीत सकता, क्योंकि ये पानी जो है, पानी में मगरमच्छ की शक्ति ज़्यादा होती। ऐसे हम भी माया के इलाके में, जैसे क्रिकेट में ऐसा होता है या कोई गेम्स में होता है, जिस जिस पार्टी का पिच है, मैं पहले सुनता था जिसका ग्राउंड है उसके लिए फेवरेबल रहता है, राइट बाल गोविंद प्रभु, ये एग्री वो हाँ नहीं बोलता क्योंकि पकड़े जाएंगे नेचुरल है कि जिस जैसे अगर पाकिस्तान इंडिया से खेल रहे हैं, अगर पाकिस्तान में मैच है तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है, तो पूरे क्राउड उसके फेवर में है और उसके जो वहाँ की जो मौसम उनके अनुसार है। जैसे हमारे लिए इस भौतिक जगत में रहना एक ये फॉरेन इलाका है, और माया से युद्ध करना, हो सकता है एक चींटी हाथी को पराजित कर दे लड़ाई में, एक बड़े टूर्नामेंट में एक बड़ा हाथी और एक आधे इंच की चींटी, इसमें कौन जीतेगा कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि चींटी हाथी को हरा दे लेकिन जीव कभी माया को पराजित नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अपने आप की शक्ति से इम्पॉसिबल, असंभव। देवी ऐशे गुणमयी मम माया दुरत्य, यू कैनॉट कॉन्कर माया, कॉनॉट। ऐसा कोई जीव नहीं है जो सेक्स डिजायर से मुक्त हो सकता है अपनी शक्ति से, ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त हो सकता है या धन की इच्छा से मुक्त हो सकता है। हम बोलते हैं न धनम न जन्म न सुंदरी, लेकिन कौन है हमारे में से इसको कोई विचार ही नहीं आता माया का, है कोई आप में से? है तो मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, नहीं है तो भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन स्पेशली कोई है? ओनली लिबरेटेड व्यक्ति, मुक्त पुरुष। यू कैनॉट फाइट, यू कैनॉट विन, इम्पॉसिबल। मतलब अगर अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने बोला चींटी हाथी को पराजित कर दे, या आप एक कुत्ता जो है समुद्र को तैरते हुए पार कर ले, लेकिन फिर भी जीव के लिए माया को जीतना असंभव है, सिवाय मामेव ये प्रपद्यन्ते, टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, यू कैनॉट कॉन्कर, यू कैनॉट कॉन्कर। आप 108 बार भी बोल सकते हैं आप नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, कितनी भी आप कोशिश करें, कितने भी आप अपना ब्रह्मचर्य व्रत हो, कितने भी आपके साधना हो, मतलब जब तक हम एक्चुअली नाम का आश्रय नहीं लेते तब तक हम नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि माया जो है वो कृष्ण का ही एक रूप है, कृष्ण की एक्सपांशन है, छाया है कृष्ण की, और उसके अंदर कृष्ण की सारी शक्तियां हैं, और जीव एक क्षुद्र है, जीव एक केशाग्र शतभागस्य, एक 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 बाल का एक छोटा सा एज का इतना छोटा सा भाग है, इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है माया को जीतना। लेकिन जब हम बोलते हैं कि कृष्ण मैं नहीं जीत सकता, कृष्ण मैं हेल्पलेस, इस भावना से पुकारते हैं हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे,
जब हम समर्पित हो जाते हैं कृष्ण मेरे लिए और कोई आश्रय नहीं है, तब कृष्ण मदद कर। तो ये पांडव भी जब महाभारत की लड़ाई में नहीं जीत सके तो गए कृष्ण के पास, आप बताइए कैसे जीतेंगे, कृष्ण कैसे जीतेंगे? बुद्धि बल ये हमारी योग्यता नहीं है, इवन हमारे शास्त्रों का ज्ञान ये भी हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता है कि जानना कि मेरी कोई योग्यता ही नहीं है, ये जानना कि कृष्ण मेरी योग्यता है। से मैं पहले हिंदी में एक कहावत सुनता था, निर्बल के बल राम, जिसके निर्बल है जो उसके बल राम है, दीनों के नाथ है भगवान, ही इज अ फ्रेंड ऑफ द पुअर एंड द हेल्पलेस, दीन बंधु दीननाथ, अमीर नाथ नहीं, शक्तिमान नाथ नहीं, स्ट्रांग नाथ नहीं, दीननाथ, दीन हेल्पलेस। सब पांडव भीष्म के पास, कृष्ण के पास गए, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, बोले अब ये भीष्म का कैसे अंत किया जाए आप बताइए। अब भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा अब उनके पास ही जाइए, उनके पास जाइए, और वो शाम के समय गए, क्योंकि महाभारत की लड़ाई में ऐसा होता था कि लड़ाई होती थी दिन भर और शाम को सब अपने अपने कैंप्स में जाते थे और शाम के बाद लड़ाई नहीं करते थे। कुछ दिन तक ये नियम पालन हुआ, बाद में सब नियम भंग हो गए, लेकिन पहले कुछ दिन नियम पालन किया, और उसमें सब पांडव गए भीष्म के पास, भीष्म ने उनका स्वागत किया। देखिए भीष्म तो शुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं, भीष्म महाजन हैं, वो क्यों कौरवों की तरफ से लड़े? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी, कृष्ण चाहते थे, भीष्म शुद्ध भक्त थे, कृष्ण चाहते थे कि वो पांडवों के विरुद्ध लड़े जिससे पूरी मानवता को एक संदेश मिले। और संदेश क्या, कि जो भी व्यक्ति धर्म के विरुद्ध है अंत में उसका नाश होगा, चाहे वो भीष्म जैसे महारथी। वृत्रासुर की कहानी, वृत्रासुर की कहानी हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे। वृत्रासुर शुद्ध भक्त थे लेकिन असुर परिवार में थे, उनको इंद्र से लड़ना था और वो इंद्र को बोले थे लड़ो लड़ो क्यों घबरा रहे हो, लड़ो तुम जीतने वाले हो, लड़ो मेरे को मारो जल्दी, मैं बैक टू करेट जाऊँ और आप यहाँ स्वर्ग लोक का आनंद भोगो या दुख भोगो जो भी इसका मीनिंग है। वृत्रासुर प्योर डिवोटी थे, तो भीष्म भी शुद्ध भक्त थे। उनको जब मालूम पड़ा, जब पांडवों ने बोला कि हाथ जोड़ के कि हमको ये उपाय बताइए कि आपको कैसे मारा जाए, तो बहुत खुश हो गए। आप में से कौन है जो खुश होगा कोई पूछने है, प्रभु जी आपको मारना चाहते हैं बता। उससे उसके पहले कि उसका वाक्य खत्म हुआ, आप उसको अगर शक्ति होगी तो मार दोगे, शक्ति नहीं है तो वहाँ से भाग जाओगे, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म हमारा एक्टिवेट हो जाता है तुरंत। लेकिन बीच में इतने खुश होते, हंसने लगते हैं, बोलते हैं इसी दिन का मुझे इंतजार था, मैं इसी दिन के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर जीवित हूँ तब तक, जब तक मैं लड़ रहा हूँ तब तक आप विजय नहीं हो सकते, और मेरी इच्छा है कि आप विजयी हों, मेरी इच्छा है कि आप राजा बने। इसलिए मैं बताता हूँ कि आपके जो सेना में जो शिखंडी है, हालांकि पुरुष शरीर में है, पिछले जन्म में अम्बा था, और क्योंकि ये स्त्री था या थी और उसने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था मुझे मारने का, और वो स्त्री शरीर में, इसलिए मैं उससे लड़ नहीं सकता। हालांकि पुरुष शरीर में है लेकिन पहले स्त्री था, इसलिए आप इसको आगे रखिए, शिखंडी को आगे रखिए और पीछे से तीर मारिए मेरे ऊपर। भीष्म बताते हैं खुशी से, एक भक्त को ये नहीं देखना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, मुझे कौन सा रोल अच्छा लगता है। इसलिए ड्रामा में हम सोचते हैं ना सबको अर्जुन का रोल मिलना चाहिए, कोई दुर्योधन बनना चाहेगा? लेकिन ड्रामा में किसी न किसी का दुर्योधन बनना ही पड़ता है, और नरसिंह ध्वंग की लीला है तो सब नरसिंह प्रहलाद बन गए, तो हिरण्यकश्यप कौन बनेगा, और मजा ही नहीं आएगा उसके बिना। बिना हिरण्यकश्यप के कोई होगा ही नहीं, बिना रावण के रामायण होगी नहीं। तैसे इस ये पूरे जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, इसमें सबको अपना अपना रोल खेलना है। एक्चुअली ये पूरा ड्रामा है, कृष्ण कृष्ण ने जस्ट कृष्ण चाहे तो एक क्षण में उसको पूरा अंत कर सकते, सबको भक्त बना सकते। किसी का रोल है लेक्चर देना, किसी का रोल है प्रचार करना, किसी का रोल है पुस्तक बांटना, किसी का रोल है माला बनाना, किसी का रोल है, सब अलग अलग रोल है बस। एक्चुअली कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं, और जो 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 सेवा हमें करनी है उस भावना से करनी चाहिए कि ये कृष्ण को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है। मुझे कितनी खुशी है कि भगवान ने मुझे अपनी सेवा में एक एक अवसर दिया किसी भी रूप में, क्योंकि अंत में कृष्ण ही सब कर रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन किस भावना से कर रहा हूँ, किस चेतना से कर रहा हूँ, किस भक्ति से कर रहा हूँ, कितनी नम्रता से कर रहा हूँ, शुद्धता से कर रहा हूँ। इसलिए भीष्म तैयार थे, उन्होंने बोला ये सीक्रेट है आप मारो मुझे। और अर्जुन को हालांकि ये बहुत दुख लगा, लेकिन अर्जुन लड़ाई में शिखंडी के पीछे रहकर भगवान कृष्ण की आज्ञा से तीरों की बरसात करने लगे, धीरे धीरे इतने तीर, और भीष्म सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण की इच्छा है, ये कृष्ण की इच्छा है कि मैं तीरों से घायल हूँ, कृष्ण की इच्छा। जीसस क्राइस्ट मुस्कुरा रहे थे जब उनको फांसी भी चढ़ाया जा रहा था, ये कृष्ण की इच्छा। हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे थे जब उनको 22 मार्केटों से पीटा जा रहा था। अरे हमारी सेवा कितनी भी तकलीफ हो वो इतनी मुश्किल तो नहीं होगी जितना जीसस क्राइस्ट या हरिदास ठाकुर या भीष्म की। मुस्कुराते रहना चाहिए, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, है ना, हरे कृष्ण जब करो और खुश रहो। ये नहीं बोला है कि चांट हरे कृष्ण एंड बी मोरोस मिजरेबल, हैप्पी। कृष्ण ये चाहते हैं, मैं ये सेवा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कृष्ण चाहते हैं, बस ये अल्टीमेट आंसर है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला कि आप झूठ बोलो, झूठ बोलना नीति के अनुसार ठीक नहीं है, लेकिन अंत में युधिष्ठिर महाराज थोड़ा हेजिटेट हुए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण जो चाहते हैं वही धर्म है, कृष्ण जाते हैं वही नीति है, कृष्ण जो बोलते हैं वही सत्य है, कृष्ण जो करते हैं वही सबसे बड़ी क्रिया है, क्योंकि कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण परम सत्य हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ। इस दुनिया में होता है मैथ्स में एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, -5 + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज +5, है ना, एब्सोल्यूट। कृष्ण एब्सोल्यूट है, परम सत्य। जो चीज कृष्ण के संपर्क में आता है वो भी एब्सोल्यूट हो जाता है। जब हम भी कृष्ण संपर्क में आ जाते हैं तो हम अंश ही रहते हैं लेकिन पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, कंप्लीटली प्यूरिफाई। इसलिए भक्ति का मतलब है कृष्ण के कॉन्टेक्ट में रहना। ये मटीरियल एनर्जी जो है बहुत बहुत पावरफुल है। प्रभुपाद जी का कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज जैसे माया का इन्फेक्शन ये हवा में है पूरा। इसका जैसे बैक्टीरिया होता है कोई इलाके में या कोई जर्म्स होते हैं, जैसे ये माया बैक्टीरिया माया बैक्टीरिया ऑल परवेडिंग परमात्मा की तरह सब जगह पर एवरीवेयर। तो इसके लिए इसे बचने के लिए रोज वैक्सीनेशन लगाना, जो हरी नाम वैक्सीनेशन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ जो व्यक्ति थरोली अपने आप को इनोकुलेशन लगा लेता है अच्छी तरीके से, वही व्यक्ति बच सकता है माया के प्रभाव से। इसलिए बहुत कम लोग बच पाते हैं इस माया के साथ युद्ध में, बहुत कम लोग बच पाते हैं, बहुत कम। इसलिए प्रभुपाद के शिष्य भी एक डिवोटी उस दिन लेक्चर में बोल रहे थे दे बिकम लाइक अ वेरी रेयर स्पीशीज, बहुत कम रह गए, क्योंकि माया बहुत बहुत पावरफुल है, माया बहुत पावरफुल है। इसलिए हमें कृष्ण के चरणों को ग्रहण करना है हमेशा। और भीष्म तीरों को सहन करते 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 जब इतने तीर हो जाते हैं, आप कुरुक्षेत्र में गए हैं तो वो स्थान है जहाँ पर भीष्म जब शरीर में पूरे तीर, दो तीरों के बीच में आप एक सुई भी नहीं रख सकते, इतने सारे तीर, और अंत में वो जमीन पर गिर पड़ते हैं मुस्कुराते हुए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, सर्विस विद अ स्माइल जैसे बोलते हैं, खुशी से कृष्ण की इच्छा है बस। तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन, आपकी इच्छा से सब कुछ है। तो मैं तो बता रहा था ये कैसे पांडव कृष्ण से मदद मांगते हैं भीष्म को पराजित करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृष्ण की सुरक्षा के बारे में नंद महाराज को चिंता है। मैं पूतना की कहानी बता रहा था कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि पूतना एक स्त्री थी, भगवान सोचे इसको नहीं मारना चाहिए मुझे, लेकिन ये राक्षसी है, डायन है, वैष्णव की अपराधी है, इसने बच्चों को मारा है, इसलिए इसको मारना भी जरूरी है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। और कुछ लोग बताते हैं, कुछ आचार्य बताते हैं, क्योंकि पूतना को बहुत डर भी लग रहा था कृष्ण को देख के, इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी, इसलिए पूतना को ज़्यादा डर नहीं लगे। पूतना नहीं जानती थी कि जिसको रस्सी समझ रही है वो एक जहरीला सांप है, उसके लिए साक्षात काल ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में उठाया। नन्हे से कृष्ण परम सत्य हैं, चाहे वो पूतना के पास गोद में हो, या वो अर्जुन के रथ के ऊपर हो, चाहे वो विश्वरूप दिखा रहे हो, या वो जरासंध का पराजित कर रहे हैं, कृष्ण में कोई अंतर नहीं होता। कृष्ण कभी भगवान बनते नहीं हैं। कुछ ही दिनों के बालक कृष्ण ने उनके स्तनों का दूध लिया और दूध के साथ उसके प्राण छीन लिए। पूतना पुकार रही थी छोड़ दो, और वो घर से बाहर भागने लगी, लेकिन कृष्ण उनको पकड़ के रखे। कृष्ण जब किसी को पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं आपको भी कृष्ण ने पकड़ लिया एक डिवोटी बता रहे थे रिलेशन, वो कुछ समय के लिए इस्कॉन से बाहर चले गए थे, तो बता रहे थे मैं चाहता था कि मैं इस्कॉन से बिल्कुल दूर चला जाऊं, भगवान को छोड़ दूं। और मैं सब जगह छोड़ के दूर किसी जगह पे गया और अलग से एक मकान में रहने लगा अमेरिका में, और वहाँ पर टेलीविज़न ऑन किया तो इस्कॉन का एडवर्टाइजमेंट देखा फिर मैं एक फुटबॉल गेम खेलने गया, फुटबॉल गेम देखने गया अमेरिका में, बहुत बेसबॉल फुटबॉल की, और वहाँ पे कोई डिवोटीज मिल के पुस्तक बांटते हुए। फिर मैं वहाँ से गया दूसरी जगह कोई रेस्टोरेंट में देखा गया, तो देखा वो कृष्ण के प्रसाद का रेस्टोरेंट, पहले अंत में वापस मैं मंदिर में आ गया कृष्ण छोड़ते नहीं। या कोई किसी ने अपराध भी किया हो, कई भक्त अपराध भी कर बैठते हैं, लेकिन कृष्ण उनको वापस लेकर आते। एक डिवोटी जो बहुत सीनियर थे इस्कॉन के, हयग्रीव प्रभु, जिन्होंने प्रभुपाद हयग्रीव महाराज बाद में उन्होंने संन्यास लिया, हयग्रीव प्रभु जो है वो प्रभुपाद के सीनियर एडिटर थे 1966 में न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी के भगवद गीता एज इट इज उन्होंने एडिटिंग की थी। और कुछ समय प्रभुपाद के पास रहने के बाद माया के प्रभाव से वो भक्तों से अलग हो गए कुछ समय के लिए, लेकिन प्रभुपाद जब भी उनको याद करते उनकी आंखों में आंसू आते। उनका नाम हॉवर्ड था, प्रोफेसर हॉवर्ड, प्रभुपाद कई बार भक्तों से पूछते हैं कि वो कैसे हैं, और उन्होंने प्रभुपाद जी उनको एक पत्र लिखा, क्योंकि आपने एक बार वृंदावन में कृष्ण का नाम सच्चे दिल से लिया है इसलिए कृष्ण आपको वापस जरूर लेकर आएंगे। शिला प्रभुपाद चले गए धरती छोड़ के, लेकिन उनके शब्द नहीं गए। गुरु की वाणी शाश्वत होती है। सच्ची परंपरा का मतलब वाणी की परंपरा, और सच्चे संघ का मतलब है वाणी का संघ। बापू का संघ कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, लेकिन गुरु के संघ का रियल अर्थ है वाणी के संघ, जिसके शब्द होते हैं और वो शब्द शाश्वत हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, आई विल नेवर डाई, आई विल लिव थ्रू माई बुक्स, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। प्रभुपाद हैं पुस्तकों के रूप में। जब आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने बैठते हैं तो सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ मैं जल्दी नोट्स बनाऊँ, अभी लेक्चर में जाके वही रिपीट कर दूँ। और फिर कई बार हम इसलिए पढ़ते हैं बुक्स कि जिससे हम लेक्चर की तैयारी के रूप में, वो नहीं पढ़ने से अच्छा है, लेकिन रियल पुस्तक पढ़ना, यानी मैं प्रभुपाद के चरण कमल में बैठा हूँ और उनके मुख कमल से उनके अमृतमय वाणी सुन रहा हूँ अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। तो क्या बोलते प्रभुपाद, हयग्रीव प्रभु, उनके शब्द कैसे सही सिद्ध हुए प्रभुपाद जी के। 1989 में हयग्रीव प्रभु बम्बई में ही थे, मुझे याद है, मैं भी उस समय वहीं पर था। उनको एक मैसेज मिला कि उनको टर्मिनल कैंसर हो गया, वो तैयारी करने लगे। सब भक्त आकर उनको न्यू वृंदावन में मदद कर रहे थे, उनको पढ़ के सुनाते। बहुत तकलीफ का समय था, क्योंकि कैंसर बीमारी ऐसी है, स्पेशली आखिरी स्टेजेस में इतना दर्द होता है, असहनीय है। पेन किलर्स दवाई ले रहे थे, मृत्यु की शैया पे थे, लेकिन वो सतत कृष्ण के विचारों में मग्न थे, कृष्ण का नाम ले रहे थे। उनके मन में एक ही दुख था, और पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने कृष्ण की, प्रभुपाद की उतनी सेवा की नहीं जितनी मुझे करनी चाहिए थी। उनको यही दुख था। और इस तरह से भक्तों के बीच में कृष्ण को स्मरण करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ग्लोरियस, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद की थोड़ी सेवा की थी और कृष्ण का नाम लिया था बस। तुम्हें कोई डर नहीं है भक्त को, भक्त का फ्यूचर हमेशा अच्छा है क्योंकि उसने कृष्ण का आश्रय ले लिया। और अभक्त का फ्यूचर हमेशा खराब है, चाहे वो LIC ले या नहीं ले, चाहे कोई पॉलिसीज ले ले। फॉल्स इंश्योरेंस, LIC नहीं है, FIC, फॉल्स इंश्योरेंस, फॉल्स इंश्योरेंस, हिपोक्रेसी है ये मटीरियल वर्ल्ड। क्योंकि इंश्योरेंस कौन दे सकता है, जब मेरे को इंश्योरेंस दे रहा है वही मरने वाला है, वो हम क्या रक्षा करेंगे? सबकी रक्षा होनी है, किसकी रक्षा करेंगे? हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारी क्या रक्षा कर सकते? वो सब उस तरीके से, ऐसे गजेंद्र के परिवार के लोग वहीं खड़े थे, गजेंद्र लड़ रहे थे 1000 साल, उसके मिसिस गजेंद्र, बेबी गजेंद्र, सब फैमिली मेंबर वहीं पे देख रहे थे कि क्या कर सकते, इतना बड़ा मगरमच्छ कौन हमको बचा सकता। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, एक वैद्य जो अपने पेशेंट को नहीं बचा सकता, एक माता पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकते, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं। मारे राखे कृष्ण, मारे कृष्ण राखे के। इसलिए ये मूड को डेवलप करिए जब के समय कि मेरे को एक्चुअली गजेंद्र, मैं गजेंद्र की स्थिति में हूँ और माया ने आक्रमण किया। और सत्य यह है कि कम से कम गजेंद्र को पता चल रहा था कि मैं अभी कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरी शक्ति जा रही है, अब मुझे बुलाना चाहिए, लेकिन हमको पता भी नहीं चल रहा, हम इतने अज्ञान में हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा। भक्ति का मतलब है अपने आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं। हम लोग हालांकि कॉलेज में लोग कोर्स सिखाते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कई बार प्रीचिंग में भी यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस क्या है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई हैव नो स्ट्रेंथ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई वीकनेस। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। शक्ति बुद्धि ही न आमी अति दीन करो मोरे आत्मसात, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं सच्चे दिल से पुकार सकता हूँ हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे।
और इस तरह से बस बोलते ही जाना है बस कृष्ण का नाम। श्री प्रभुपाद एक नामामृत, रोज सुबह यहाँ पर नामामृत किताब पढ़ते हैं, कुछ एक पैराग्राफ नामामृत है ना, बुक ऑन द होली ने, उसमें से एक पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोलते हैं, वेदर इन हेल और हेवन, स्काई स्क्रेपर और इन इन द बस और एनीवेयर, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, जहाँ भी आते हैं हरे कृष्ण जप करें और फिर कृष्ण रक्षा करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया कि नंद महाराज चिंता कर रहे हैं कृष्ण की रक्षा के लिए। ये पैराडॉक्स है भक्ति का। यहाँ पर हमको बताया जाता है कि कृष्ण का आश्रय लो, कृष्ण मदद करेंगे, कृष्ण रक्षक हैं, कृष्ण पालक हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण के पालक हैं नंद महाराज, कृष्ण के रक्षक हैं नंद महाराज, और नंद महाराज को चिंता है। आप नंदग्राम में कभी जाओगे, एक छोटी सी जगह है जो नंदीश्वर पर्वत के पास में, जहाँ पर नंद महाराज ने नरसिंह भगवान की मूर्ति स्थापना की। किसी ने देखा है नंदग्राम में? सीन द स्मॉल टेम्पल ऑफ नरसिंहदेव। बहुत रिमोट स्थान है, जनरली बड़े ग्रुप में नहीं जा सकते। नरसिंह भगवान की डीटी 5000 साल पुरानी, कृष्ण की रक्षा के लिए नंद महाराज ने मूर्ति की स्थापना की। नरसिंह या रामादि मूर्ति शुकला नियमे नच, जो सब अवतार कृष्ण से ही आ रहे हैं, वो अवतार जो भगवान की रक्षा करने के लिए स्थापित किए। यह है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब माता पिता का रस, इसमें भक्त को डर लगता है, ओह कृष्ण 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 को कोई खतरा हो जाएगा, कृष्ण का जीवन खतरे में, शायद कोई कृष्ण को कोई जानवर स्पर्श करके कृष्ण आग में हाथ डालेंगे, कृष्ण को भूख लगी। शीला माता आता है और निमाई उस सांप को देखकर उसके पास में जाते हैं बड़े खुशी से, और वो सांप अपनी कुंडली धारण करता है और उसके ऊपर लेट जाते हैं। बाकी लोग डर के पुकार लेते हैं, गरुड़ा गरुड़ा नरसिम्हा नरसिम्हा, सब लोग गरुड़ जी को याद कर, नरसिंह भगवान को याद कर रहे होते हैं। लेकिन निमाई बड़े खुशी से खेल रहे हैं उस सांप के पास जो कि स्वयं अनंत शेष हो, और जब सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं वो सांप दूर जाने लगता है, लेकिन निमाई उसको और फिर से पास में बुला के उसके साथ खेलने लगते हैं, और बाद में उनको उठाकर अंदर लेकर आते हैं। चची देवी को चिंता होती है कि मेरे बालक निमाई को डर है। डर भी डरता है कृष्ण का नाम सुन के, जहाँ पर कृष्ण का नाम कीर्तन होता है डर भी डर जाता है, इसलिए डर नहीं आता वहाँ पर। इवन यमरोग यमदूत भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर नाम कीर्तन है। लेकिन वही भगवान कृष्ण के लिए कि खतरा खतरे खतरे के मारे डर लग रहा है यशोदा माता को नंद महाराज को, यह है भक्ति प्रेम की। क्योंकि इनका जो प्रेम है वो ऐश्वर्य शीतल है, जो वैकुंठ में जो प्रेम होता है वो ऐश्वर्य युक्त प्रेम होता है। वो भगवान नारायण बहुत महान है, नमो नारायण जय नारायण, वो नारायण के साथ खेलते नहीं हैं। कभी देखा नारायण किसी अपने पार्षदों के साथ खेलने जा रहे हैं? जैसे कृष्ण खेलते हैं, कृष्ण कभी दौड़ते हैं, उनके मित्र आगे मैं कृष्ण को पहले पकड़ूंगा, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, एक कुएं के पास जाकर आवाज़ करते हैं, और कुएं से जब आवाज़ आती है तो उसको गाली देते हैं। कभी कभी कृष्ण के मित्र बंदरों के पास जाते हैं, बंदरों की नकल करते हैं, बंदर सबकी नकल करते हैं लेकिन बंदरों की नकल करते हैं। कभी कभी पक्षियों को पकड़ने की प्रयास करते हैं, ये ब्रह्मा विमोहन लीला में आता है सब कहानी। तो ये सख्य रस और ऐश्वर्य रस उससे भी ऊपर है। लेकिन वैकुंठ में जो भक्ति है उसमें ऐश्वर्य की भावना है, ओ कृष्ण बहुत महान, मैं कभी कृष्ण के बराबर नहीं हो सकता, नहीं कृष्ण से बड़ा हो सकता। लेकिन ब्रज भक्ति सबसे ऊँची है, जो ब्रज का प्रेम है सबसे ऊँचा है, क्योंकि उसमें ये भावना नहीं है कि कृष्ण भगवान है, उसमें ये भावना है कि कृष्ण मेरे प्रेमी हैं, लवर हैं, या कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार विशेष है, क्योंकि इस अवतार में श्री चैतन्य महाप्रभु वो जो दुर्लभ व्रज का प्रेम है वो सबको बांट रहे हैं। स्वयं कृष्ण किसी को अपनी भक्ति बांटते नहीं हैं, कृष्ण भक्ति को जिस भक्त पहले से भक्ति में उनके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, लेकिन नए भक्त नहीं लेते। नया प्रोग्राम नहीं है, कोई वीटीए प्रोग्राम नहीं है कृष्ण लीला में, नए जो ऑलरेडी भक्त उनके साथ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस ब्रज भक्ति को बांटते हैं, और वो भक्ति कैसी है कि ऐश्वर्य से शीतल। उसमें ये भावना नहीं है कि कृष्ण महान है मैं छोटा हूँ, नहीं, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ, आमी तो तोमार तुम्ही तो अमार। और यह ब्रज भक्ति प्राप्त करने का तरीका है जो कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी कहकर अंत करूँगा, क्योंकि प्रसाद की कहानी है इसलिए आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाए। ये उस समय की है जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं, और रथ यात्रा के बाद हर साल रथ यात्रा के लिए नवद्वीप से भक्त आते हैं, और एक बार कुलीन ग्राम के वासियों से श्री चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं। कुलीन ग्राम में मुख्य भक्त होते हैं सत्यराज खान, रामानंद वासु। सत्यराज खान के पिता का नाम होता है गुणराज खान, और गुणराज खान के पिता का नाम होता है गुणाख्यान, उसके पिता का नाम होता है अनंत राम और दामोदर, और ऐसे करते करते पूरी परंपरा। तो गुणराज खान ने एक कविता लिखी होती है जिसका नाम होता है श्री कृष्ण विजय, और उस कवि उस पुस्तक में उन्होंने एक एक पंक्ति लिखी होती है, लाइन जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छी लगती है, और वो लाइन क्या है, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु जब कुलीन ग्राम के वासियों से मिलते हैं इतने प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं क्योंकि आप कुलीन ग्राम से हो जहाँ से गुणराज खान है, जहाँ उन्होंने लाइन लिखा है नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, बाई दिस स्टेटमेंट आई एम सोल्ड ऑन टू द डिसेंडेंट्स ऑफ गुणराज खान। ये गुणराज खान के जो वंश के लोग हैं मैं उनके हाथ बिक चुका हूँ, मैं उनकी प्रॉपर्टी हूँ। और आपका तो बोलना ही नहीं, तुम्हारा की कथा तुम्हारा ग्रामीण कुकुर से ही मोर प्रिय, अन्य जने रहु दूर। आपके गांव के जो कुत्ते हैं वो भी मेरे को बहुत प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि नंदनंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, नंदनंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। एक लाइन से भगवान इतने खुश रहते। चैतन्य महाप्रभु खुश करना बहुत आसान है अगर आप एक बार भी पुकारते हैं गौरंगा, लगता है सब लोग ईगर है प्रसाद के लिए, इसलिए जोर से नंदनंदन कृष्ण गौरंग, एक बार भी भज गौरंग गौ गौरंग लाओ गौरंग नाम जे जना गौरंग भाजी से है मोर प्राण। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि अगर कोई गौरंग का नाम एक बार भी लेता है वो मेरे प्राण है, इट्स अवर लाइफ गौरंग। तो गौरंग महाप्रभु इस तरह सबको बुला के फिर बोलते हैं आप जो रथ यात्रा में जो रस्सी लाते हैं ये रस्सी टूट जाती है, अगले साल आप विशेष रस्सी लेकर आना। तो सत्यराज खान हाथ जोड़कर भगवान के पास आते हैं और बोलते हैं मैं पतित हूँ, मैं गिरा हुआ, मैं गृहस्थ हूँ, मुझे बताइए मेरा क्या कर्तव्य है। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु का आंसर है ये गृहस्थ के लिए भी है, ब्रह्मचारी के लिए भी है, और सब बीच में उनके लिए भी है, सबके लिए सिंपल आंसर। वो क्या है, प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। बोलते हैं फर्स्ट विदाउट सेसेशन Continuously chant the holy name Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Without cessation, मतलब कहते रहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नॉन स्टॉप निरंतर, और वैष्णव सेवा serve the Vaishnavas whenever possible, serve Krishna जहाँ भी जो योग्यता हो। फिर वो पूछते हैं प्रश्न हाउ कैन आई रिकग्नाइज अ वैष्णव, कैसे पता चलेगा वैष्णव कौन है। प्रभु कहे जार मुख सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभा का, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम निकला है वो वैष्णव। इसका मतलब आप सब हम सब सभी लोग अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज में एक कृष्ण नाम को रे सर्व पापो छय, वन वन चैंटिंग द होली नेम जस्ट वंस A person is relieved from all sinful reaction. सारे पाप दूर हो जाते हैं। और नवविदा भक्ति पूर्ण नाम हैते है। One can complete the nine processes of devotional service simply by chanting the holy name. सब नौ विधि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम सब हरि नाम। और आप दूसरी विधि करते भी हैं उसकी सफलता के लिए हरि नाम ऐड करना चाहिए। डीटी वर्षिप में भगवान का नाम आता है, श्रवण में भगवान के बारे में श्रवण, पूजन में भगवान के नाम नाम के बारे में सब कुछ, इसलिए नाम हैते सर्व जगत उद्धार। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु उनको उपदेश करते हैं। फिर अगले साल वो भक्त प्रश्न पूछते हैं कि वैष्णव कौन है, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण नाम ले रहे वो वैष्णव है। सेकेंड ईयर ये डेफिनेशन देते हैं, पहली बार बोला सिर्फ जो एक बार, और अगली बार बोला कि निरंतर जो हर समय बोल रहे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ये मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी जो हमेशा भगवान के नाम लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कैन चैंट 174 राउंड्स एवरी डे, वो मध्यम अधिकारी। हम लोग कई बार मैं जब इसको मैं नया आया था तो मैं सोच रहा था अभी मुझे दो साल हो गए अभी मैं शायद मध्यम या उत्तम बन गया हूँगा लेकिन अभी 20 साल बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैं कनिष्ठ हूँ मध्यम मीन्स वन हू स्टॉप्स नॉन स्टॉप जो हर समय कृष्णा मेरा मध्यम अधिकारी, तो हमारा क्या लेवल है चाहे हम कुछ भी माने। और नेक्स्ट ईयर वो फिर से प्रश्न पूछते हैं, और इस बार चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि उत्तम अधिकारी का डेफिनेशन है, उत्तम अधिकारी कौन है, जिसको जिसको देखते ही हाँ दूसरे लोग कृष्ण को याद करें, सो देखते ही सब लोग गाने लगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से वो उत्तम अधिकारी है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु मुकुंद और रघुनंदन को पास में बुलाते हैं, क्योंकि वो श्रीखंड से होते हैं, मुकुंद रघुनंदन के पिता होते हैं, और पूछते हैं मुकुंद से तुम रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन तुम्हारे पिता हैं, है ना, पिताजी से पूछ रहे हैं कि तुम इसके पिता हो या ये तुम्हारे पिता हैं। तो जवाब देते हैं रघुनंदन मेरे पिता हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कृष्ण भक्ति में प्रेरणा दी। तो आप में से भी कई लोग शायद अपने पिताजी के पिताजी हो गए नहीं आप भक्ति में आए उसके बाद माता पिता भक्ति में, तो इस तरह से अगर आप पिताजी के पिताजी हैं इसलिए फिर से पिताजी बनने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी फादर। फिर एक दिन चैतन्य महा एक दिन मुकुंद जो है एक राजा के सेवा कर रहे थे, मुसलमान राजा था, उसमें राजा मुसलमान था, मुसलमान राजा के वो वैद्य थे, डॉक्टर थे, और वैद्य होने के नाते उसके पास में बैठते थे, और अचानक उन्होंने देखा कोई एक सेवक राजा को पंखा करने आया, मोर का पंख, और जैसे उन्होंने मोर का पंख देखा उनको कृष्ण की स्मृति हुई और वो ऊंचे आसन से जमीन पर गिर पड़े। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, खुद नीचे गिर, क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि जन कोई व्यक्ति गिर जाए तो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर स्वयं गिर गए यहाँ पर उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हुआ तो पानी डाला उसके ऊपर, थोड़ी देर बाद होश आया उसको, क्या हुआ, मुकुंद बोले नहीं मेरे को एपिलेप्सी, थोड़ी बीमारी हो गई, मृगी रोग हो गया। वो बताना नहीं चाहते थे कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त, श्री प्रभुपाद जी कभी बताते नहीं थे, खाली एक बार गोरखपुर में वो राधा माधव गा रहे थे 72 में, तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे, उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया, कभी कभी नहीं तो कभी दिखाते नहीं थे। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु मुकुंद का गुणगान करने लगे, उसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाए, बोले सार्वभौम तुम और तुम्हारे भाई विद्या वचस्पति है, आप दोनों भगवान की सेवा करो, कैसे, आप सेवा करो भगवान की दारू ब्रह्म के रूप में, दारू ब्रह्म यानी जगन्नाथ जो लकड़ी के रूप दारू ब्रह्म, और विद्या वचस्पति तुम सेवा करो भगवान की जल ब्रह्म के रूप में, जल ब्रह्म यानी गंगा, गंगा गंगा भी भगवान का रूप है, जो व्यक्ति एक बार पुकारता है गंगा गंगा, चैतन्य भागवत में लिखा है कि एक बार गंगा गंगा पुकारने से उसको कृष्ण भक्ति मिल जाती है, लेकिन पुकारने का भी गुण आज लेट पुकारा अगर कोई हवा चलती है, अगर हवा चल रही है और हवा उस कोई जीवात्मा को स्पर्श करती है गंगा को स्पर्श करने के बाद, तो उस व्यक्ति को भक्ति मिल जाती है। अगर कोई कीड़ा है या कोई जंतु है, कोई जानवर है, कोई पेड़ है गंगा के किनारे, उसका भाग्य इंद्रलोक के राजा स्वर्गलोक के राजा इंद्र से भी ज़्यादा है, एक कीड़े का, क्योंकि गंगा के तट पर निवास करते हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी भजन कुटी गंगा के किनारे बनाई थी, गोद्रुम द्वीप, देखे मायापुर में गोद्रुम द्वीप में। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जब सब भक्त चले जाते हैं, तब फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे बोलते हैं आप मेरे घर प्रसाद के लिए आइए, अभी सब भक्त चले गए हैं इसलिए आप मेरे घर में आइए, एक महीने के लिए प्रसाद लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये सन्यासी धर्म के विरुद्ध है कि एक ही घर में इतने दिन प्रसाद लेना। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं ठीक है आप 25 दिन के लिए आइए, नहीं आप 20 दिन के लिए आइए, नहीं आप 15 दिन के लिए आइए, नहीं अंत में बोलते हैं प्लीज़ आप 10 दिन के लिए आइए, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु 5 दिन के लिए आना स्वीकार करते हैं, बार्गेनिंग दोनों के बीच में बातचीत चलती। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य घर में बहुत सुंदर प्रसाद बनाते हैं, 10 प्रकार के शाक, एक शुक्त प्रिपरेशन जो कि नीम पत्तियों से बनाया जाता है, फिर एक केक जो कि छाना से बना हुआ होता है, जो दूध को फाड़ने के बाद, बटर मिल्क में उड़द के दाल के पीसेस छोटे छोटे फ्राइड पीसेस, फिर दुग्ध तुम्बी, दुग्ध कुष्मांडा, लाफरा, मोचा घाटा, मोचा भोजा। यहाँ पे बनाया कभी? कुंज बिहारी प्रभु आपको खिलाएंगे कभी, आपको मालूम होगा ना ये सब चीज़ें। वृद्ध कुष्मांडा, फूल बाड़ी और भतोला और बाड़ी और स्क्वैश पम्पकिन, उड़द दाल बड़ा, मूंग दाल बड़ा 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 बड़ा, स्वीट चटनी, मीठी चटनी, 5-6 प्रकार के सावर प्रेपरेशन, बड़ा आमला और स्वीट बनानास और स्वीट राइस के केक और कोकोनट केक्स, कांजी बड़ा, दुग्ध चीड़ा, दुग्ध लकलकी, और अंत में कविराज बोलते हैं, कही ते ना सकी, आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब, स्वीट राइस मिक्स्ड विद घी, पोर्ड इनटू अर्थन पॉट, मिक्स विद चंपकला, कंडेंस मिल्क एंड मैंगो। अब ये सब खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिकल संदेश आप जानते हैं, एक स्वीट, बंगाली स्वीट आइटम, चर्न्ड कर्ड, ये सब आइटम्स, और फिर बहुत प्रकार के चीज़ों को अर्पण करके भगवान को बोलते हैं आप स्वीकार करो। श्री चैतन्य महाप्रभु आकर बोलते हैं, क्या है अलौकिक, दुई प्रहर भीतर कैचे हैला रंधन, दो प्रहर 6 घंटे में आपने इतने आइटम्स बना दिए, अगर 100 लोग 100 स्टोव के ऊपर अगर बनाते हैं मिलकर तो भी 6 घंटे में नहीं बन सकते इतने आइटम, आपने कैसे बनाया? सार्वभौम भट्टाचार्य मुस्कुरा कर बोले, यह आश्चर्य की बात नहीं है, जो व्यक्ति प्रसाद खाने वाले हैं उसी ने बनाया है। हमने कुछ नहीं किया, मेरे और मेरे पत्नी ने जैसा खाली सामग्री एकत्रित की है, जो इंग्रेडिएंट्स, अब बैठिए, मैं इतना प्रसाद नहीं ले सकता है, बहुत ज़्यादा है, अब ये मेरे लिए कुछ नहीं है। भट्टाचार्य बोले, देखो आमी जानी तुमी जते का खाए, आप जितना खा सकते हो मैं जानता हूँ, क्यों? नीला चले भोजन तुम्हें करे 52 बार, जगन्नाथपुरी में 52 बार खाते हो, एक एक भोगेर अन्न शत शत भार। आपने देखा है जगन्नाथपुरी में भगवान को ऐसे नहीं कि कटोरी प्लेट बना के ऑफरिंग करते, जितना बनता है सब ऑफरिंग किया जाता है, देखा है कभी? बड़े बड़े वो लेकर जाते हैं, जो क्या होते हैं वो मुंह में कपड़ा बांध के पंडे होते हैं, लेके जाते हैं, रास्ते में भी नहीं आ सकते, वो तुरंत सब रोक देते हैं बहुत। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी में एक शॉर्ट नोटिस पे 10,000 लोगों के लिए प्रसाद व्यवस्था हो सकती है, शॉर्ट नोटिस में 10,000 रेगुलर होता है, और भी कर सकते हैं अगर बोला जाए, कि ये चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद था पार्वती देवी को कि जगन्नाथपुरी में सबको प्रसाद वितरित किया जाए, जानवरों को भी, पशुओं को भी, कोई झूठा भी सिस्टम नहीं होता, कोई भी, सब प्रसाद हमेशा प्रसाद है, लेकिन जगन्नाथपुरी का प्रसाद और भी स्पेशल। और फिर आप द्वारका में आपके 16,108 रानियाँ हैं, द्वारका में आपके 18 माता हैं, देवकी, रोहिणी और वसुदेव की और पत्नियाँ, वृंदावन में आपके पिता हैं नंद महाराज, और नंद महाराज के भाई हैं सुनंद, उपनंद, अभिनंद और नंदन, और फिर आपके मैटरनल अंकल आपके मामा हैं, फिर आपके पिताजी के बहन के हस्बैंड हैं, फूफा हैं और मौसा हैं, और आपके ग्वाल बाल हैं, और इन सब के घर में आप 2 बार खाते हो दिन में, कितनी बार हो गया? 16,108 प्लस 18 प्लस कितने मित्र हैं प्लस 5 पिताजी चाचा जी और 3 भाई, यशोदा के 3 भाई थे, यशोधर, यशोदेव, सुदेव, और उनके आंट के हस्बैंड 2 थे, महानील और सुनील, ये सब कृष्ण रोज 2 बार खाते हैं। और उसके अलावा गोवर्धन पूजा तुम्हें कितना अन्न खाई ला, हमने गोवर्धन पूजा में कितना खाया था, इसलिए जो आप हैं हम जानते हैं कौन है, तुम्ही तो ईश्वर, आमी छीत क्षुद्र जीव, मैं छोटा सा जीव, आपको क्या ऑफरिंग कर सकता हूँ, आप जो भी आपके सामने रखा है वो थोड़ा सा आप स्वीकार करो। महाप्रभु बैठ गए खाने के लिए, और एक दरवाजा था जहाँ पे महाप्रभु अंदर आए थे, और दूसरा दरवाजा था जहाँ पे किचन के लिए रास्ता था, तो किचन से और सामग्री ले आते थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य दंडा लेके तैयार खड़े थे, क्योंकि उनका एक दामाद था, सन इन लॉ, जिसका नाम था अमोघ, निंदक था, उसने स्पेशलिटी थी उसके निंदा करने में, स्पेशली सन्यासियों की, सार्वभौम भट्टाचार्य को डर लग रहा था कहीं वो महाप्रभु का अपमान नहीं कर दे, जैसे सार्वभौम अंदर गए उस समय अमोघ वहां पर आ गए और देखकर बोले, ओ यही अन्न तृप्त है 10-12 जन, अकेले सन्यासी कोरे भोजन। ये प्रसाद जो है ये 10-12 लोगों के लिए होना चाहिए, एकटाज खाना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये देखकर उसको अनु पड़ा, लकड़ी लेकर मारने के लिए दौड़े उसको, लेकिन अमोघ इतने फास्ट भाग गए और पीछे पीछे गए, उसको गाली देने लगे, बोलने लगे कि मेरी लड़की साठी विधवा हो जाए, अमोघ की मृत्यु हो जाए, उसको बहुत बुरे शब्द बोलने लगे। और दोनों अमोघ सॉरी सर्व भट्टाचार्य उसकी वाइफ सिर को अपने हाथ में रख कर बैठे हुए अपनी छाती को पीट रहे, हमने भगवान को घर में बुलाया कि इंसल्ट करा दी हम, महाप्रभु ने बोला कोई बात नहीं। और उनकी इच्छा के अनुसार महाप्रभु बहुत खुशी से खा रहे थे प्रसाद। प्रसाद खाने के बाद हाथ धोए, फिर उनको लवंग और कर्डमम स्पाइसेस अर्पण किए गए, उनको फिर फूल माला पहनाई गई, चंदन लगाया गया और महाप्रभु विश्राम करने गए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आकर बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके प्रति अपराध किया, आपको अपने घर में बुला के आपकी निंदा कराई। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, नहीं निंदा नहीं, सहज कही ला, अमोघ सही बोल रहे हैं, वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, वो मेरे को रक्षा करना चाहते हैं, मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहिए सन्यासी को इसलिए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पीछे पीछे गए और बोले कि मुझे माफ़ कर दो। फिर भगवान ने उनको बोला, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप घर में जाओ। यहाँ पर घर में सार्वभौम भट्टाचार्य अपने पत्नी से बोलने लगे, अगर जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की निंदा करता है उसको अगर मैं मार डालूँ तो उसका पाप का जो फल है उसके लिए प्रायश्चित हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने दामाद को अभी मार डालूंगा और फिर उसके बाद, क्योंकि उसको मारना ठीक नहीं है, ब्राह्मण है, फिर मैं अपने आप को भी मार डालूंगा। लेकिन ये दोनों ब्राह्मण हैं, क्या करना चाहिए? कम से कम इतना कर सकता हूँ कि उस निंदक का मैं अभी मुंह भी नहीं देखूंगा कभी और उसका नाम भी नहीं लूंगा, और जाओ मेरी लड़की को बोल दो कि अपने पति के साथ अपने संबंध को तोड़ दे, क्योंकि जब पति का पतन हो जाता है तो फिर उसके साथ संबंध रखना जरूरी नहीं होता। फिर अमोघ उस रात को घर में गए निंदा करने के बाद, और उनको बहुत भयंकर बीमारी हो गई, कॉलेरा हैजा हो गया। और उस समय जब भट्टाचार्य को मालूम पड़ा कि मेरे दामाद को यह हुआ, वो बोले, सहज है दैव कैल मोर कार्य, जो मेरी इच्छा थी भगवान ने बिना मांगे ही पूछी पूरी कर दी, वेरी गुड वंडरफुल। ईश्वर अपराध पहला तत क्षण है, ये भगवान का अपराध कर रहा है उसका फल हो गई। और फिर उनको एक श्लोक याद आया जो कि महाभारत में बताया गया कि जब कोई महात्मा के प्रति अपराध करता है तो उसकी धन, उसका ऐश्वर्य, उसकी सुंदरता सब कुछ नष्ट हो जाती है। इधर गोपीनाथ आचार्य जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य उसके पत्नी दोनों ने प्रसाद नहीं लिया है, क्योंकि उनको दुख लग रहा है कि आपका अपमान हुआ, और आपका अपमान करने के कारण अमोघ अभी शरीर छोड़ने वाले हैं, उनको कॉलेरा हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए गए अमोघ के पास, उसके छाती के ऊपर हाथ रखा और बोले, अमोघ सहज निर्मल ए ब्राह्मण हृदय, एक ब्राह्मण का हृदय निर्मल स्थान होता है, सहज स्थान, कृष्णेर बसीते योग्य स्थान नहीं है, दिस नॉट अ फिट प्लेस फॉर सॉरी दिस इज एक्चुअली अ फिट प्लेस फॉर कृष्णा टू सिट। ब्राह्मण का हृदय कृष्ण के लिए होता है, लेकिन आपने इस स्थान पे एक चंडाल को रहने दिया है, वो चंडाल है ईर्ष्या, एनवियसनेस, जेलसी, मत्सरता, तुमने मत्सरता को क्यों स्थान दिया इस स्थान पर? अब सार्वभौम भट्टाचार्य के संग से तुम्हारा हृदय साफ हो गया, होगा उठो कलमश गुचीला, जाओ उठो और कृष्ण नाम लो, उठो अमोघ तुम्ही लो कृष्ण नाम, अचिरे तुम्हारा कृपा करे कृष्ण भगवान, अब जल्दी उठो और कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सुनी कृष्ण कृष्ण बोली अमोघ उठिला, अमोघ कृष्ण कृष्ण बोलते उठे और प्रेमोन मद मत है नाचीते लागिल, नाचने लगे, आंखों से आंसू आने लगे। देखो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी है कि अमोघ ने कोई संडे प्रोग्राम भी अटेंड नहीं किया था, उसने निंदा की थी, उसको तुरंत कृष्ण प्रेम मिल गया, आंखों से आंसू आने लगे, शरीर में कांपने लगे, कि महाप्रभु की कृपा। कभी कभी महाप्रभु कृपा ऐसी होती तुरंत उद्धार हो जाता है, कभी कभी जैसे आजकल भी कृपा मिल रही है हम सबको, लेकिन वो ग्रेजुअली मिल रही है, धीरे धीरे मिल रही है। और ऐसे अपराध का फल भी मिलेगा लेकिन धीरे धीरे। कई बार लोग सोचते हैं मैंने निंदा की, देखो लेप्रेसी नहीं आया, कॉलेरा नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, मैं और भी निंदा करूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो उसका रिएक्शन मिलता है समय के बाद। द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लो बट दे ग्राइंड एक्सीडिंगली फाइन। भगवान की जो जो भी भगवान सजा देते हैं ऐसे नहीं, एक सजा नहीं होती। तो अमोघ नाचने लगे, गाने लगे और चैतन्य महाप्रभु हंस रहे थे और अंत में उनके चरणों में गिर के बोले, भगवान क्षमा करो मोरा अपराध, मेरे अपराध को माफ कर दो। यही छार मुख तुम्हारा निंदा करीनु, ये मुख से मैंने निंदा की। एता बोली अपने गाल चाड़िया अपने, मारने लगे अपने आप को, इतना जोर जोर से मारने लगे और इतना मारने लगे कि चढ़ाई थे गाल फूलाई ल, इतनी जोर से मारने लगे अपने आप को, उनका गाल फूल गया। हाथे धरी गोपीनाथ आचार्य निषेध कुरीला, गोपीनाथ आचार्य रोक दिया। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उनको रोक दिया और बोले, अमोघ तुम सर्वम भट्टाचार्य से संबंधित हो, आप सर्वम भट्टाचार्य के दामाद हो इसलिए मेरे को बहुत प्रिय हो। सर्वम भट्टाचार्य मेरे को इतने प्रिय हैं, उसके घर में दास दासी और कुत्ते भी मेरे को प्रिय हैं, और आपका कहना ही क्या। तो ये सीक्रेट है भगवान की कृपा को प्राप्त करना, कि उसके उस व्यक्ति के साथ संबंध रखना जिसको भगवान की कृपा मिली है। से कालियानाग की पत्नी भक्त थे, कालियानाग भक्त नहीं था बल्कि वो असुरिक प्रवृत्ति का था, ईर्ष्यालु था, उनके भक्त होने के, उनके पत्नी भक्त होने के कारण उनको भी कृपा मिल गई। सार्वम भट्टाचार्य स्वयं मायावादी सन्यासी थे, सन्यासी नहीं सॉरी गृहस्थ थे, लेकिन गोपीनाथ आचार्य उनके ब्रदर इन लॉ जो हैं वो भक्त होने के कारण उनको भी कृपा मिल गई। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अमोघ को बोले, अमोघ अपराध नहीं सदा लो कृष्ण नाम, बस कृष्ण नाम लो और अभी अपराध मत करो। फिर सार्वम भट्टाचार्य के पास गए, सार्वम भट्टाचार्य बोलने लगे, भगवान आपने क्यों उसको बचा दिया, उसको मरने देना चाहिए था। चैतन्य महाप्रभु बोले, नहीं अमोघ शिशु, इज लाइक अ चाइल्ड, बच्चे के समान है, अगर शिशु गलती करता है तो माफ़ कर देना चाहिए। अब आप अपना व्रत रखना, आपने ये व्रत रखा है मेरे को अपराध के कारण, मेरे इंसल्ट के कारण, अब व्रत छोड़ दो, जाओ तुम कृष्ण, तुम स्नान करो और प्रसाद ग्रहण करो। फिर सार्वम भट्टाचार्य जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये कहानी बताई गई इसलिए कैसे एक भक्त की कृपा के द्वारा भगवान की कृपा मिलती है, भक्तों से संबंध रखना चाहिए, सभी भक्तों से, स्पेशली कुछ से बहुत घनिष्ठ जो हमको मदद कर सके, जैसे कि हम भी कृष्ण का नाम ले सकें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
कंक्लूजन में लास्ट श्लोक में कविराज गोस्वामी बोलते हैं, श्रद्धा कोरी ए लीला सुने जय जन अचीरा पाए श्री चैतन्य चरण। जो भी श्रद्धा के साथ इस लीला को सुनता है, सार्वम भट्टाचार्य के प्रसाद की लीला को, उसको अचीर यानी बहुत जल्दी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल की प्राप्ति होती है। श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कृष्ण को याद कर सकूं, सब भौतिक दोषों से मुक्त हो जाऊं और अंत समय गा सकूं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। कोई कमेंट है, प्रश्न? एकलव्य प्रभु वांट्स, यस लक्ष्मीनारायण प्रभु।
मुझे वैकुंठ लोक का जो भाव है वो दास्य भाव है, और गोलोक का जो भाव है वो अलग है, साक्ष्य भाव में रहती है जैसे अर्जुन रहते हैं। तो अगर हम उनके पदचिन्ह पर चल रहे, गोपी को पदचिन्ह पर, उनके साक्ष्य भाव में तो हमारा जो वैष्णव जो चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, तो अगर कोई दास्य भाव में सेवा कर रहे हैं अभी, तो अलग संप्रदाय का हो सकता है, तो अगर बोल रहे हैं आप जो कर रहे हैं आप साथ, मतलब उनके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आपको बराबरी, उनकी बराबरी करना चाहते हैं, ऐसे अगर कोई बोले तो उनको कैसा आंसर देगी? उनका चेतना ही दासी भाव में रहना चाहिए भगवान के साथ।
नहीं, हम भी दास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास, वी आर इटर्नली सर्वेंट्स। लेकिन फर्क यह है कि हम जो है सेवा जो कर रहे हैं, वो सेवा करते करते किस रूप में दास बनना है वो रिवील होता है, प्रकट होता है। हम साधना भक्ति में दास रूप में सेवा करते हैं, और जब अपना भगवान का संबंध मालूम पड़ जाता है तो किस प्रकार का दास है। नंद महाराज भी दास हैं, यशोदा भी दास है, लेकिन वो दास की सेवा है वात्सल्य रस में, उसका क्या रोल है, कृष्ण क्या चाहते हैं, वो उसको करना है। और इस समय हम समझ नहीं सकते, जैसे एक भक्त जो है एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में ऊपर टेरेस पे थे और कुछ बंदर आने लगे, वो जप कर रहे थे, तो उसने पूछा इसका मतलब मैं रामचंद्र जी का भक्त हूँ क्या, बंदर आ रहे हैं? तो महाराज बोले नहीं ऐसे नहीं है, आप पहले अभी पहले हमको मटीरियल डिजायर से मुक्त होना है, हमको क्या पता चलेगा हमारा वात्सल्य रस है कि साख्य रस है, पहले सेक्स रस से मुक्त होना है, मटीरियल सेक्स लाइफ से मुक्त होना है, फिर बाद में पता चलता है कि क्या रस है। अभी तो सेवा करते रहना, ये बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है। एक छोटा बच्चा होता है वो ABCD सीख रहा है, पूछेगा क्या बनना है, कोई बोलेगा बच्चे मैं डॉक्टर बनूंगा साइंटिस्ट बनूंगा, उसको मालूम नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ABCD लिखना नहीं आता, तो पहले उसको हाई स्कूल पास करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसको अपना रस मालूम। ठीक है, लाइक टू कॉमेंट। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। एकलव्य महाराज की।